ओम शांति। आदरणीय उर्मिला दीदी जी का हम करताल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। संक्षिप्त में दीदी जी का परिचय देना चाहूंगी। आपका जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ। आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंग्लिश में एमए करने के बाद ईश्वरी सेवा में लग गए। 37 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और 35 वर्षों से समर्पित होकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय माउंट आबू मुख्यालय में राजयोग शिक्षिका हैं। ज्ञान अमृत मासिक पत्रिका के संयुक्त संपादिका व त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के सह संपादिका भी हैं और आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों जैसे भारत एकता, युवा साइकिल अभियान, शिव संदेश रथ यात्रा अभियान, महिला सशक्तिकरण अभियान तथा विभिन्न प्रांतों में आपने सेवाएं दी है। ईश्वरी विश्वविद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स तथा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आप सक्रिय योगदान देते हैं। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं। आपके लेख परिवर्तनकारी होते हैं। आप पत्रिकाओं में ऐसे ऐसे लेख प्रकाशित करते हैं जिससे कईयों ने अपना जीवन परिवर्तन भी किए हैं। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, व्यक्तित्व विकास, माइंड मैनेजमेंट आदि विषयों पर व्यक्तित्व देती हैं और ऐसे दीदी को हम अपने सामने पा करके बहुत भाग्यशाली हैं। और अभी हम आपके अनुभव से अग्रसित होंगे और आपकी वाणी से भरपूर होने जा रहे हैं। और आज आपका विषय है कर्मों की गहन गति। आदरणीय उर्मिला दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का हमारा विषय बहुत ही व्यवहारिक है। रोज के जीवन में हम सब सुबह से शाम तक अनेक कर्म करते हैं। प्यारे बाबा ने हमको कर्मों के गुह्य गति समझाई है। भक्ति मार्ग की भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें किस कर्म का क्या फल मिलता है उसका वर्णन है। भक्ति मार्ग की जो गीता है उसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि दो स्थितियां हैं, एक है कि व्यक्ति कर्म करे और एक है कि व्यक्ति कर्म का संन्यास करे, तो आप दोनों में से किसको महत्व देते हो? तो उस गीता में दिखाया है, भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास से अधिक अच्छा है कर्म करना। और फिर कहते हैं कि दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो कर्म के बिना रह सके। मम्मा ने भी अपनी एक वाणी में कहा है कि दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। एक लोग हैं जो कहते हैं कि हम कर्मों का संन्यास कर देंगे क्योंकि कर्म करते हैं तो पाप का लेप छेप लगता है, कर्म नहीं करेंगे तो लेप छेप ही नहीं लगेगा। लेकिन मम्मा ने कहा कर्म करने का मतलब केवल ये थोड़ी है कि हम धन नहीं कमाएंगे। अगर कोई किसी का कमाया हुआ खाता है तो वो भी तो कर्म करना ही हुआ ना, तो लेप छेप तो उससे भी लगेगा। जंगल में जाके बैठना, तपस्या करना, शास्त्र पढ़ना, सुनाना, ये सब भी कर्म है। तो कर्म का संन्यास कोई कर ही नहीं सकता जिसके पास शरीर है। एक छोटा बच्चा भी कर्म करता है, हंसता है, रोता है, पलक झपकता है, सोता है, जागता है, ये सब कर्म है। दूसरा, मम्मा ने कर्म का पहलू बताया, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कर्म ही पूजा है और इसलिए वो कहते हैं हम तो 18 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए यही पूजा, दान, भजन सब कुछ है। लेकिन पूजा के समय तो मनुष्य के मन में शांति होती है, ईश्वर का चिंतन होता है क्या? जो लोग 16 और 18 घंटे काम करते हैं उनके मन में ईश्वर का चिंतन होता है? शांति होती है क्या? टुडे वर्क इज नॉट वर्शिप बट वर्क इज वॉरशिप। आज के समय में कर्म पूजा नहीं है लेकिन कर्म युद्ध है। चाहे वो ऑफिस ही जो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की रीस करता है, रेस करता है, नेगेटिविटी बीच में होती है संबंधों में, परिवारों में भी माताएं बहनें काम करती हैं तो वो भी युद्ध की तरह ही करती हैं। कहीं दुर्भावनाएं हैं, कहीं कंपटीशन है, कहीं दिखावा है। तो मम्मा ने कहा कर्म पूजा नहीं है। फिर उन्होंने तीसरी बात कही है कि कर्म योग पूजा है। अगर आप कर्म करते हुए परमात्मा की याद में है, बाबा की याद में है, तो वो पूजा है और वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। दुनिया में भी कर्म के बारे में मोटी मोटी धारणा ये है कि आप जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन कर्म की गति को गुह्य कहा गया है। उसकी गुह्यता क्या है उसके बारे में समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कर्म के संबंध में बहुत प्रश्न होते हैं। कई लोग कहते हैं अमीर आदमी अच्छा आदमी दुखी क्यों, बुरा आदमी सुखी क्यों, अच्छे आदमी की आयु छोटी क्यों, बुरे आदमी की आयु लंबी क्यों, बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, ये हमको समझना है। एक होता है उसका प्रत्यक्ष पहलू और एक होता है उसका अप्रत्यक्ष पहलू। जैसे मान लीजिए हमने भोजन खाया, तो भोजन शरीर में जाके दो भागों में बंटता है। एक तो वो भोजन का जो सूक्ष्म अंश है वो खून में मिल जाता है। आज आपने जो भोजन खाया वो जीवन भर आपके खून में रहेगा। और भोजन का एक हिस्सा है जो शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं स्थूल मोटा हिस्सा। तो कर्म के भी दो पहलू हैं। जैसे हमने किसी को खिलौना दिया, एक बहुत अमूल्य खिलौना दिया, तो देखने वालों को लगता है कि मैंने उसको खिलौना दिया। ये खिलौना एक स्थूल चीज है जो आंखों से दिखाई दे रही है, लेकिन खिलौना देते समय मेरी भावनाएं कैसी थी? मैंने दिखावे के हिसाब से खिलौना दिया, मान शान की दृष्टि से खिलौना दिया, अपनी अमीरी को प्रदर्शित करने के लिए वो कीमती खिलौना दिया, एहसान जताने के लिए वो कीमती खिलौना दिया, दया भाव से दिया, या मैंने निस्वार्थ भाव से नेकी कर दरिया में डाल इस भावना से वो खिलौना किसी को दिया। अब जब हम इस संसार से जाएंगे तो खिलौना तो यहीं रह जाएगा, वो तो प्रकृति की बनी हुई एक चीज है, प्रकृति की चीज प्रकृति के जगत में रह जाएगी, लेकिन हमारे साथ क्या जाएगा? खिलौना देते समय हमारी जो भावनाएं थी वो भावनाएं हमारे साथ जाएंगी, और उन भावनाओं के आधार पर हमारे नंबर निश्चित होंगे, और वो भावनाएं आत्मा की प्रॉपर्टी बन जाएंगी, वो जन्म जन्म उसके साथ रहेंगी। तो कर्म का एक है अविनाशी पहलू और दूसरा है विनाशी। दुनिया में लोग विनाशी पहलू को बहुत महत्व देते हैं, मैंने उसको चीज दी, मैंने उसको चीज दी, लेकिन उसके पीछे भावना क्या थी उन भावनाओं का महत्व भूल जाते हैं, जबकि असली नंबर तो भावनाओं से मिलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा गरीब का एक रुपया और अमीर का 10,000 बराबर। अब देखने में तो 10,000 वाले का कई गुना है, लेकिन भावनाओं की बात है। गरीब आदमी की भावना कितनी शुद्ध है, कितनी सच्ची है कि उसके पास अगर 10 रुपए हैं तो उसने 10 में से 1 दे दिया, अर्थात अपनी संपत्ति का 10% दे दिया। और जिस आदमी के पास कई करोड़ हैं, उसमें से उसने केवल 10,000 दिया तो वो तो संपत्ति का 1% भी नहीं बनता, इसलिए उसके 10,000 की कीमत उसके 1 रुपये से भी कम हो जाती है। इसको कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। कई बार फल प्रत्यक्ष होता है लेकिन कर्म दिखाई नहीं देता, कर्म गुप्त होता है। अब जैसे एक व्यक्ति है, उसकी आयु लगभग 75 साल है और वो रोज सुबह घूमने जाता है और कबूतरों को दाना डालता है, तो उस एरिया के लोगों के मन में ये इमेज है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, सुबह सुबह घूमने भी जाता है, पशु पक्षियों पे दया भी करता है। लेकिन एक दिन सड़क के ऊपर कोई जाती आती गाड़ी उसको टक्कर मार जाती है और उसका एक पांव घुटने के ऊपर से कटके अलग हो जाता है। अब लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो इतना अच्छा आदमी, भगत आदमी, प्रकृति ने इसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अन्याय होता है और बुरे लोग तो यूं ही घूमते रहते हैं। लेकिन ये आदमी इस मोहल्ले में तो अभी आया है रिटायरमेंट के बाद, जब ये नौकरी में था तब इसके कर्म कैसे थे वो तो किसी को नहीं मालूम। अपने पद का इसने दुरुपयोग किया, कईयों पर अत्याचार किए, कईयों का शोषण किया, और जो पांव टूटा है उससे कईयों को ठोकर मारी, तो वो सारा इकट्ठा होकर के अब 75 साल की आयु में सामने आ गया। अभी जो फल है वो दिख रहा है लेकिन कर्म किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन बिना कर्म के तो फल होता नहीं। इसलिए बिना बीज के जैसे फल नहीं होता। आज अगर किसी के जीवन में कोई दुख है तो उसने दुख का बीज बोया होगा तभी तो वो उगा, और अगर आज किसी के जीवन में सुख है तो उसने कभी सुख का बीज बोया होगा तभी तो आज उगा। हम उसके बीज को नहीं देखने गए, उसने कब बोया हमें नहीं मालूम, लेकिन उगने के बाद वो दिखाई दिया इसका मतलब उसने कभी ना कभी बोया था। तो इस दुनिया में अन्याय कहीं भी नहीं है। बाबा ने अपनी मुरली में कहा है ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है और एक्यूरेट। किसी के साथ यहाँ अन्याय नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैंने जो काम किया वो किसी ने भी नहीं देखा, अर्थात वो अपने कर्म को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो करता है वही सबसे पहला गवाह है। मैं जो करने वाली हूँ मैं ही मेरे कर्म की गवाह हूँ, मेरे कर्म को देखने वाली मैं हूँ, और मेरे अंदर मेरे कर्मों के संस्कार बन जाते हैं, मैं उन्हें छिपा ही नहीं सकती, भगवान उनको पढ़ लेता है। इसलिए कर्म को छिपाया नहीं जा सकता। किसी ने कहा है कर्म छिपाया ना छिपे, और छिपे तो मोटो भाग, और दाबी दूजी ना रहे रुई लपेटी आग। आग को छिपाने के लिए किसी ने उसको रुई में लपेट दिया, रुई लपेट करके आग थोड़ी छिप सकती। तो जैसे रुई लपेट के आग नहीं छिपती, ऐसे किसी भी मानव के, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, राजा हो रंग को, सतयुग हो त्रेता हो द्वापर हो कलयुग हो, किसी के भी कर्मों को छिपाया नहीं जा सकता। भक्ति मार्ग की जो रामायण है उसमें लिखा है, को ना काहू का सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब श्री राम और सीता और लक्ष्मण वनवास में जाते हैं और जब उनको भूमि पर शयन करना पड़ता है, तब किसी पात्र के मुख से ये बात कहलाई गई है कि कोई किसी को ना सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्मों के फल सभी भोगते हैं। अर्थात श्री राम का वनवास ये भी कर्म का फल है, किसी व्यक्ति का किया हुआ नहीं है, ये अपने कर्म का फल है। तो यहाँ रामायण की दो घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनमें कर्मों की बड़ी गहन गति समझाई गई है। पहली घटना है जब श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये चारों भाई छोटे छोटे हैं तो ये सरयू नदी के किनारे कबड्डी खेलते हैं। एक बार जब ये कबड्डी खेल रहे थे तो राम के ग्रुप के बच्चे और भरत के ग्रुप के बच्चे, ऐसे ये दो ग्रुप बने हुए थे, तो भरत के ग्रुप के बच्चे सारे हार गए। राम के ग्रुप के बच्चे खुश हो गए कि हम जीत गए, लेकिन श्री राम ने कहा जब तक भरत नहीं हारेगा तब तक हम कैसे जीते माने जाएंगे। तो श्री राम ने एक शर्त लगाई कि मैं दौड़ूंगा और भरत मुझे छुएगा, अगर उसने मुझे छू दिया तो वो जीत गया और अगर वो नहीं छू पाया तो मैं जीत गया। तो राम के ग्रुप के बच्चों ने कहा भैया आप तेज दौड़ना ताकि वो आपको छू ना सके, नहीं तो हम हार जाएंगे। लेकिन श्री राम थोड़े से ही चले और भरत ने पीछे से आके उनकी पीठ पे हाथ लगा दिया और जैसे ही पीठ पे हाथ लगाया तो वो पीछे मुड़े, मुस्कुराए, ताली बजाई और बोले भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए। तो भरत की आंखों में आंसू आ गए। हम समझ सकते हैं कि ये आंसू क्यों आए, समझ सकती हैं ना। अब श्री राम ने बीज बोया। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म माना बीज, एक बीज बोया। अब इस बीज में क्या क्या है, भाई के प्रति प्यार, भाई के लिए अपनी जीत का त्याग, भाई का कोई मजाक ना उड़ाए अर्थात भाई का सम्मान, और भाई को आगे रखने की भावना, मैं भले पीछे हो जाऊं लेकिन मेरा भाई सदा आगे रहे। उस बीच में ये कितनी भावनाएं हैं, प्यार है, खुशी है, सम्मान है, देने की भावना है, आगे बढ़ाने की भावना है, वो एक बीज उन्होंने बोया। अब हम जो बोएंगे वही तो उगेगा ना। अपमान बोएंगे तो अपमान उगेगा, किसी को नीचा दिखाया हमने तो कोई हमें दिखाएगा। कभी आम के बीज से भिंडी नहीं लग सकती, अमरूद के बीज से कभी सेब नहीं लग सकती, तो अगर मैंने अपमान बोया हो तो सम्मान कैसे उगेगा, और अगर सम्मान बोया हो तो अपमान कैसे उगेगा, जो बीज वैसा ही फल। तो श्री राम ने जो बोया वो बीज बड़ा उत्तम क्वालिटी का था, और कोई भी बीज बोते ही नहीं उगता है, बोने के बाद कुछ समय तो उसको छोड़ना पड़ता है, वो अंकुरित होता है, अभी तो बाल अवस्था में, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसको फूल पत्ते टहनियां वृद्धि को पाते हैं, और तब जाके उसको फल लगता है, और वो फल पकता है, और पकने के बाद बोने वाले को खाने को मिलता है, तब तक वो दूर दूर से देखता रहे बेशक। तो श्री राम ने बाल्यकाल में ये जो बीज बोया ये अंकुरित होता रहा, बढ़ता रहा, फिर इसकी टहनियां बड़ी हुई, फिर इसको फूल लगे, फिर फल लगा, और फिर ये फल एक दिन पका, और पकने के बाद ये श्री राम को ही मिला, उसका प्यार उसको वापस मिल गया, उसका त्याग उसको वापस मिल गया, भाई के प्रति उसका सम्मान उसको वापस मिल गया। कब? जब श्री राम के राज तिलक की बारी आई, और जब भरत की मां ने कहा कि गद्दी भरत की और श्री राम को वनवास, तो श्री राम का बोया हुआ बीज उगाया। भरत ने कहा जो भाई जिंदगी भर मुझे जिताता रहा, आज भला वो कैसे हारेगा, मैं उसे हारने नहीं दूंगा, मैं भी उसे जिताऊंगा। उसने कहा गद्दी मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। तो श्री राम ने उसे प्यार दिया, मान दिया, खुशी दी, तो आज भरत भी उसे गद्दी दे रहा है, जबकि माँ और बाप ने तो गद्दी भरत को दे दी, और भरत लीगली उसका वारिस हो गया, लेकिन वो जानता है और इसलिए वो राम को आगे करता है। तो जो बोया वो उगाया। आज अगर मेरे जीवन में प्यार है तो मैंने बोया होगा, और अगर नफरत है तो अवश्य मैंने नफरत भी बोई होगी। आज अगर कोई मीठा बोल रहा है मुझे तो मैंने बोया होगा, और अगर कोई कड़वा बोल रहा है तो हो सकता है मैं कभी बो के भूल गया हूं। कई भाई बहन कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। कर्म चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में, फल तो निकलेगा। अब हमने करेला अनजाने में, हमारे हाथ से एक बीज छूट के गिर गया, झोली फटी हुई थी उसमें से दो बीज निकल के गिर गए, उगाए करेले लग रहे हैं। अब कोई कहता है जी हमने करेला बोया ही नहीं। अरे आपकी फटी झोली में से गिरे थे दो बीज, करेले का काम तो उगना है, चाहे जानबूझ के बो चाहे अनजाने में बो। कर्म तो अपना फल देगा, चाहे आप जानबूझ के करो या अनजाने में करो। अब कोई व्यक्ति चलते चलते सड़क पे केले का छिलका फेंक देता है, थोड़ी देर में एक बुजुर्ग आता है, पांव रखता है, फिसल के गिरता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो आदमी कहता है जी मैंने तो कुछ नहीं किया। सचमुच आपने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जिम्मे आपके ही लगेगा, क्योंकि कर्म लापरवाही में किया। ये नॉलेज है कि भाई ऐसा करने से किसी का नुकसान हो सकता है, फिर भी हम लापरवाही में ऐसा कर्म करते हैं। तो जब कर्म की लेखनी लिखी जाएगी तो उस आदमी को जो फ्रैक्चर हुआ वो किसके हिस्से में जाएगा? वो छिलका फेंकने वाले के हिस्से में जाएगा। हालांकि उसका लक्ष्य नहीं था कि मैं छिलका फेंकूं और कोई आए और फिसले और गिरे और फ्रैक्चर हो, लेकिन हो गया। तो कर्म चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में करो, उसका फल तो निकलेगा। इसलिए अनजाने में भी कोई कर्म ना हो इतनी सावधानी चाहिए। रामायण की ही एक दूसरी घटना है, राजा दशरथ शिकार खेलते हैं, और जब आदमी शिकार खेलता है, हिंसा करता है, तो हिंसा करने की आदत पड़ जाती है, और आदत बुरी बला, आदत आदमी को अदालत में ले जाती है। कहता तो वो यही है कि मैं बस केवल एक बार कर रहा हूं, लेकिन आदत एक बार नहीं, बार बार रिपीट होती है। हिंसा एक ऐसा कर्म है जो जानवर को अपनी लपेट में लेते लेते कब आदमी को लपेट में ले ले मालूम ही नहीं पड़ता है, जो दुश्मन को लपेट में लेते लेते कब अपनों को लपेट में ले ले मालूम ही नहीं पड़ता है। गलत तो गलत ही है। अब राजा दशरथ के शिकार खेलने का रिजल्ट क्या निकला? जानवर को मारते मारते एक दिन आदमी की बारी आ गई। अब यहां भी एक कर्म जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन कर्म तो कर्म है, हो गया तो फल तो निकलेगा। किसी ने तीर जानबूझ के चलाया या अनजाने में, सामने वाले की हत्या तो हो ही जाएगी। तीर को थोड़े पता है कि मैं जानबूझ के चला हूं कि अनजाने में चला हूं, वो तो अपना काम करके आएगा। तो स्वर्ण कुमार की हत्या हो गई, और जब किसी की भी हत्या होती है तो एक की नहीं होती है। जैसे आप पेड़ को उखाड़ो तो उसकी जड़ें नहीं उखड़ती, उसका तना और टहनी और पत्ता और फूल और फल सबके सब उखड़ जाते हैं। हर एक आदमी के सराउंडिंग में सैकड़ों लोग होते हैं, उसके आश्रित, उसके प्रियजन। तो ये हत्या केवल एक आदमी की नहीं थी, इसके माता पिता की भी हत्या थी, क्योंकि बेटे के बिना वो दोनों जी नहीं सकते थे। तो राजा दशरथ के हाथों तीन हत्याएं हो गई, स्वर्ण कुमार और उसके आश्रित माँ बाप, तीन चिताएं एक साथ जली। और इतना बड़ा पाप का बोझ लेकर के वो अपनी राजधानी में आ गया। जैसे ही राजधानी में आया, कुछ समय के बाद उसके यहाँ चार राजकुमारों का जन्म हुआ। तो लोगों के मन में देखिए क्या भाव पैदा हुआ। मोटी दृष्टि से जो लोग देखते हैं वो क्या सोचते हैं? अरे इसने तीन को मारा और इसको चार बेटे पैदा हो गए, यहाँ तो भाई भगवान का न्याय कुछ समझ में नहीं आता। मारने वालों को तो बेटा देता, हम तो दान कर करके थक गए, हमारे यहाँ तो बेटियां ही पैदा हो रही हैं। मोटा मोटी तो लोगों को यही भाव जागेगा। फिर वो किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, तांत्रिक कहेगा हाँ तुम भी किसी के गर्दन दबा दो, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। भारत में ऐसे बहुत सारे तांत्रिक। अच्छा अगर कोई आदमी ना मिले तो बकरी की गर्दन कटवा दो, भैंसे की कटवा दो, मारने के बदले जीवन मिलेगा। कैसी अंधश्रद्धा है, कैसा अंधविश्वास है, कैसा अज्ञान है। कर्म का फल ऐसा नहीं है जैसे व्यापार में हिसाब होता है, कर्म का फल बड़ा गुही है। राजा दशरथ को ये जो चार बच्चे मिले हैं, ये पिछले जन्म की तपस्या का फल है। पिछले जन्म में उसने बहुत घोर तपस्या करके भगवान को कहा था कि आप मेरे घर पुत्र रूप में आना। मैं कहानी की बात सुना रही हूँ, हम जानते हैं रामायण भी यादगार है, हम जानते हैं रामायण के पात्र भी आर्टिफिशियल है, लेकिन उसमें से हम अगर कुछ सीख ले सकते हैं तो उस भाव से हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले जन्म का फल है चार पुत्रों की प्राप्ति, और अभी ये जो कर्म करके आया है वो तो अभी जमीन में से अंकुरित भी नहीं हुआ है, वो तो अभी अंकुरित होगा, फिर दो पत्ते निकलेंगे, फिर ये पेड़ ऊपर बढ़ेगा, फिर इसको डाली लगेंगी, फिर इसको फूल, और तब जाके खाने को मिलेगा। अभी लंबे समय के बाद इसका फल निकलेगा। लेकिन जो इस गुह्य गति को नहीं जानता वो क्या सोचता है कि अभी अभी जो कर्म किया ना, ये उसी का फल निकल आया है। फल तुरंत बहुत कम निकलता है, कुछ समय तो जरूर लेता है। तो राजा दशरथ के चार राजकुमार हो गए, उसके बाद वो गुरुकुल में गए, पढ़ाई पूरी हो गई, फिर चार राजकुमारियां आ गई। अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है, और लोग सोचते हैं कि राजा दशरथ के कर्म का फल तो निकला ही नहीं, ये विधाता का कैसा विधान है, उसको अपने कर्म के बाद सुख ही सुख मिल रहा है। इतना जघन्य अपराध किया और अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है, राजा दशरथ तो फूले नहीं समा रहे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। लेकिन किसी भी पाप कर्म का फल तुरंत नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि प्रकृति मनुष्य को बीच में थोड़ा सा समय देती है कि तू इस बीच कोई तप कर लेगा तो इस कर्म का फल सूली से काटा हो जाएगा। बीच में मार्जिन तो बहुत लंबी थी, इधर कर्म किया राम के जन्म से पहले और उसका फल निकला श्री राम के राज तिलक के समय, तो कितना पीरियड हो गया। अगर हम राज तिलक का समय कम से कम भी 40 साल माने तो 40 साल का समय मिला, लेकिन राजा दशरथ भूल ही गया कि मेरे से कोई पाप भी हुआ था। आदमी करके पाप को भूल जाता है, लेकर के देना भूल जाता है, बोल करके मैंने कहा था ये भूल जाता है, किसी को दुख दे करके मैंने दुख दिया था उससे मुकर जाता है। लेकिन मुकरने से क्या होता है, हमने बैंक से 20,000 रुपए उधार लिए और बैंक ने हमारा ब्याज लगा के कहा एक साल के बाद 30,000 लौटा देना, मान लो मोटा मोटी। अब हम लेके भूल गए तो क्या कागजों में ब्याज लगना बंद हो जाएगा हमारे भूलने से? वो तो लगता रहेगा, और एक साल पूरा होते ही बैंक कर्मी आपके दरवाजे पे आपको खड़े मिलेंगे, आपके यहाँ से भूल गया पर कागजों में थोड़े चला गया, वो तो लिखत है। तो राजा दशरथ भूल गए लेकिन कर्म थोड़े खत्म हो गया, और वो कर्म पक गया, और पकने के बाद करने वाले की झोली में गिरता है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि जैसे हजारों गवों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही करोड़ों के बीच में कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है। कोई करने वाला वेश बदल ले, देश बदल ले, नाम बदल ले, लेकिन कर्म फिर भी वहीं जाएगा। घर में कितने भी लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, उसमें से केवल वही कष्ट भोगेगा जिसने वो कर्म किया था, बाकी 9 लोग चैन की नींद सोएंगे, जागेगा केवल वो जिसने वो कर्म किया था। बाकी लोग सहानुभूति दिखा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ सबसे अधिक उसी को होगी जिसने वो किया। अब जैसे ही श्री राम के राज तिलक की बारी आई तो केकई ने वरदान मांग लिया कि गद्दी भरत को मिलेगी और श्री राम को वनवास। और जैसे ही श्री राम के वनवास की चर्चा हुई, राम के वनवास की बात केकई ने कही, तो राजा दशरथ कैसे तड़फे। जैसे तीर लगने पर स्वर्ण कुमार तड़फा था, क्या बोई थी, तड़फ बोई थी, तो तड़फ उगाई। हिंसा बोई थी, हिंसा उगाई। उसने तीर से हिंसा की थी और केकई ने वाणी के तीर से हिंसा कर दी। दर्द तो बराबर ही था, वाणी का भी तीर है, बड़ा भयंकर तीर। घर में बहुत लोग हैं, राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधू हैं, मंत्री है, गुरु है, सभासद, लेकिन तड़फा केवल राजा दशरथ और कोई नहीं तड़फा, सब चैन की नींद सोए, लेकिन उसकी नींद भी गायब है, भूख भी गायब है, चैन भी गायब है। तो कर्म अपने कर्ता के पास ही पहुंचेगा, उसके परिवार के लोग उसको बंटवा नहीं सकते। और लोग तो ये कहते हैं कि राम भगवान था, पत्थर को पांव लगाया तो वो अहिल्या बन गई, लेकिन वही पुत्र अपने पिता को तड़फने से नहीं बचा सका। महल में है बेटा और बाप महल में तड़फ रहा है, भूखा प्यासा पड़ा हुआ, लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रामायण ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। भगवान से बेशक मत डरो, क्योंकि भगवान तो दयालु है, माफ कर देगा, पर कर्म से जरूर डरिए, क्योंकि कर्म माफ नहीं करेगा। कर्म तो उल्टा रूप लेकर के हमारे पास आएगा, जैसे हमारा बोया बीज वापस हमारे गोदाम में आ जाता है, हमारा किया हुआ कर्म वापस हमारे पास आएगा। तो मुझे क्या चाहिए मैं वही बोऊं। अगर मुझे सोयाबीन चाहिए, खूब सारी चाहिए, तो मैं सोयाबीन बोऊं। अगर मुझे गेहूं चाहिए तो मैं गेहूं बोऊं। अगर मुझे सुख चाहिए जीवन में तो मैं सुख बोऊं। अगर मुझे प्यार चाहिए तो मैं प्यार बोऊं। शांति चाहिए तो शांति बोऊं। इज्जत चाहिए तो इज्जत बोऊं। शुभ भावनाएं चाहिए तो शुभ भावना बो, क्योंकि फसल तो उसी की उगेगी जैसा बीज होगा। दुर्भावना बो के मैं शुभ भावनाएं चाहूं, पॉसिबल ही नहीं। कड़वाहट बो करके मैं मिठास चाहूं, पॉसिबल ही नहीं। तो राजा दशरथ अपने कर्म का फल पा लेते हैं। और फिर देखिए विधि का विधान, वहां हत्या तो केवल एक की हुई थी, स्वर्ण कुमार की, लेकिन उसके माता पिता चूंकि आश्रित थे तो वो भी उसके साथ चले गए। और यहां वनवास तो केवल एक को ही मिला है, श्री राम को, लेकिन सीता और लक्ष्मण चूंकि उससे बहुत प्रेम करते हैं तो वो भी राजा दशरथ की आंखों से ओझल हो गए। उसने वहां तीन को मारा और इधर तीन लोग इसको छोड़ करके चले गए। अब कई लोग कहते हैं कि दोष केकई का था, लेकिन किसी भी कर्म के भुगतान के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है। जैसे हम किसी से चीज खरीदते हैं बाजार में तो कहते हैं भाई इसका भुगतान करके आओ, तो जैसे पेमेंट होती है, हिंदी में उसको भुगतान कहते हैं, इसी तरह से कर्म का भी भुगतान है। और उस भुगतान के लिए कोई ना कोई बिचौलिया बनता है, और वो कोई ना कोई मनुष्य ही बनता है अधिकतर। अब केकई तो बीच में केवल निमित्त बनी, कोई तो बनेगा, लेकिन असली दोषी कौन है? केकई नहीं है, असली दोषी राजा दशरथ का वो कर्म है। अगर उन्होंने वो कर्म ही ना किया होता तो केकई निमित्त भी ना बनता। अब किसी आदमी ने स्मैक की, हेरोइन की तस्करी करनी शुरू की और पुलिस को पता पड़ गया, पुलिस ने उसको हथकड़ी डाली, जेल में ले गई। अब पुलिस वाला तो केवल निमित्त है, उसके बाद जज ने सजा सुनाई 5 साल जेल, जज भी केवल निमित्त है। असली दोषी कौन है? उसका कर्म। ना वो ये तस्करी करता ना वो जेल जाता, पुलिस वालों की उससे क्या शत्रुता है? वो तो अपना फर्ज निभा रही है, हथकड़ी डाली, लेकिन वो उसके शत्रु नहीं है, वो तो निमित्त है। तो जो लोग उस कर्म का भुगतान करने के निमित्त बनते हैं वो दोषी नहीं होते हैं, हम उनसे भी शत्रुता ले लेते हैं। जैसे ही किसी ने हथकड़ी डाली तो उस आदमी ने पुलिस वाले पे ही मारपीट शुरू कर दी, तू कौन होता है मुझे हथकड़ी डालने वाला। तो अब क्या होगा, पहले का कर्म तो भुगताया नहीं और एक नया कर्म और खड़ा हो गया, अब डबल चार्ज लगेगा। वो तस्करी के 5 साल जेल के अलग और पुलिस वाले पे हमला करने के 5 साल और, अब 10 साल हो गए। तो व्यक्ति के सामने कर्म का फल आया और वो उखड़ गया, इरिटेट हो गया, क्रोध करने लगा, क्रोध में उठापटक करने लगा, सहन नहीं कर पाया और क्राइम कर लिया, तो पहले वाला हिसाब किताब तो था ही, एक नया हिसाब किताब और बना ली और वो और ज्यादा उलझ गए। इसलिए किसी ने कहा कि जब कोई जीवन में दुख आता है तो क्या करें, अपमान हो जाता है, दुख हो जाता है, कोई व्यक्ति अन्याय कर देता है, क्या करना चाहिए, गाली दे देता है, क्या करना चाहिए। अब इसके सामने इसके दो ऑप्शन है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि सामने से जो काली बॉल आई कहीं वो मेरी फेंकी हुई तो नहीं है। मैंने एक आदमी के घर में काली बॉल फेंकी थी, अगले दिन उसने उठा के वो काली मेरे घर में फेंक दी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन मैं ये तो याद करूं कि मैंने ही फेंकी थी, मेरा फेंका हुआ वापस आया, इसमें गुस्सा करने की क्या बात, मैं जो दूंगा वही लौटेगा। और मान लो मैं गुस्सा करता हूं, अब मैं सोचता हूं बोल छोड़ो मैं तो पत्थर फेंकूंगा, तो मैंने पत्थर फेंक दिया गुस्से में, तो अगले दिन उधर से 2 आ गए और फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने 2 की जगह 4 फेंके, उधर से 8 आ गए। और अगर मैं अपने कर्म को स्वीकार कर लेता, उसके यहां से काली बॉल आई और मैं उसे पकड़ लेता, भाई एक बार गलती से फेंकी गई थी, अब दोबारा नहीं फेंकूंगा कुछ भी हो जाए, तो खेल यहीं पे स्टॉप हो जाता। तो सामने वाले की तरफ से अगर कोई दुर्व्यवहार है, किसी ने अपमान किया, किसी ने कड़वे शब्द बोले, किसी ने बात को बड़ा चढ़ा करके कहा, किसी ने इल्जाम लगाया, किसी ने कुछ और दुर्भावनाएं प्रकट की, तो अच्छा है कि उस बॉल को पकड़ लो और पलटवार नहीं करो, तो खेल वहीं रुक जाएगा। खेल कैसे चलता है, किसी ने गेंद फेंकी और मैंने फेंकी, फिर उसने फेंकी मैंने फेंकी, तो ऐसा खेल सुबह से शाम तक चल सकता है। और उसने फेंकी और मैंने पकड़ ली, भाई मैं तो खेलना ही नहीं चाहता, एक बार आया बॉल मांगने मैंने दी नहीं, दोबारा आया बॉल मांगने मैंने दी नहीं, तो क्या हुआ, खेल खत्म। तो ये जो दुख का खेल है, दुर्भावनाओं का खेल है, ये खेल लंबे तब चलते हैं जब दोनों सक्रिय रहते हैं। अगर एक भी निष्क्रिय हो जाए तो खेल वहीं पे रुक जाता है। तो बाबा ने हमको क्या कहा, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे खेल को चलाना नहीं, ऐसे खेल में निष्क्रिय हो जाओ। और फिर लोग ये भी कहेंगे इसको तो खेलना ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं है सुन लो, कोई कहेगा ये बोलता नहीं है, ये चुप हो गया, ये दोषी है, इसके मुंह में तो जबान नहीं है, कोई बात नहीं है सुन लो, ये सब बातें सुनने में ज्यादा नुकसान नहीं है पर खेलने में बहुत नुकसान। आप खेलेंगे और लोग तमाशा देखेंगे, उनको तो देखने के लिए तमाशा चाहिए। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है, पूर्व जन्मों का भी है, इस जन्म का भी है, नजदीक वालों का भी है, दूर वालों का भी है, अपनों का भी है, परायों का भी है, जान वालों का भी है, अनजान वालों का भी है, जीवन में जो भी कुछ है उसको स्वीकार करना ही समाधान है। अगर पलटवार किया, अगर क्यों क्या किया, अगर अंदर ही अंदर नफरत की, अंदर ही अंदर बदले की भावना रखी, तो उन सब का परिणाम भी कैसा निकलेगा, उस कर्म को अधिक उलझाएगा, अधिक कॉम्प्लिकेटेड करेगा, उसका शमन नहीं करेगा। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे बोए गए बीज, और अब हम बाबा से दृढ़ संकल्प करते हैं कि इन बीजों को हम जला करके ही छोड़ेंगे। हमको पता पड़ गया, इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं बच्चे ऐसा योग करो कि 63 जन्मों के जो पाप के बीज हैं वो जल जाएं। आपको पता है भुनी हुई चीज दोबारा नहीं उगती, तो ऐसा ज्वालामुखी योग हो कि वो जल जाएं, वो उगे ही नहीं, फिर कोई क्या कोशिश करेगा उगाने की, जब वो जल ही गए तो अब तो वो उगेंगे नहीं। इसलिए समाधान यही है कि हम योग करें, बातों को भुला दें, लेट गो कर दें, और योग बल से उन सबको फिनिश कर दें, तो जीवन में सच्चा आनंद आएगा, आत्मा अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती जाएगी और अपने मूल स्वरूप का आनंद लेगी। आप सबने लुकमान हकीम का नाम सुना होगा। लुकमान हकीम अपने बाल्यकाल में बहुत गरीब थे और वो घर वालों के द्वारा बेच दिए गए थे। तो कोई एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसके यहाँ वो नौकरी करने लगे थे। दास प्रथा थी, बच्चों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, पुरानी बात है। तो लुकमान हकीम दिल का बड़ा अच्छा था, ईश्वर को याद करता था, ईश्वर से डरता था, लेकिन उसका मालिक बड़ा क्रूर, बड़ा अत्याचारी। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे बुरे आदमी के लिए भी शुभ भावना रखो, बुरे आदमी के लिए भी अच्छा सोचो, आपकी सोच रंग लाएगी। आपकी सोच का रिजल्ट ना निकले ये हो नहीं सकता। तो वो अपने मालिक के बारे में उसे दुखी तो बहुत था, पर सोचता था ये भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसको सद्बुद्धि दो, नहीं तो इसको तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। रोज कहता था भगवान मुझे कोई तरीका बता, मैं मेरे मालिक को सुधार सकूं, ये बहुत अत्याचारी है, बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत क्रूर है। और सचमुच उसके पास 8-10 जो खरीदे गए नौकर थे लुकमान की तरह, उन पे डांट डपट, कम देना, अधिक काम कराना, ब्लेम लगाना, वो सब काम करता था। तो जब गेहूं बोने की सीजन आई तो उसने लुकमान को कहा ये गेहूं लो और अपने साथ 4 और नौकरों को ले लो और खेत में गेहूं बोओ। तो लुकमान चला गया और वहां जाके उसने खेत में जो बो दिए। शाम को वापस आया तो मालिक ने पूछा लुकमान गेहूं बो आया? बोला हाँ। फिर जो 4 लड़के भेजे थे उनसे पूछा भाई गेहूं बो आए? बोला नहीं मालिक, हम तो जो बो के आए। बोला अच्छा, लुकमान तो कहता गेहूं बो के आए। दोबारा गया लुकमान के पास, अरे लुकमान तूने क्या बोया, जो बोए कि गेहूं बोए? बोला मालिक मैंने गेहूं बोए, अब गेहूं उगेंगे। तो बोला नौकर तो कह रही है कि तूने जो बोए। बोला मालिक जो मर्जी बोया पर उगेंगे गेहूं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो फिर उन नौकरों के पास गया, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोला मालिक हम क्यों झूठ बोलेंगे, आप खेत में जाके देख लो। अब कुछ दिन के बाद जब पौधे उगाए तो वो खेत में गया, देखा ये तो जो के पौधे। फिर आया लुकमान के पास, अरे लुकमान तेरी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तू जो बो के आया और तू कहता है मैंने गेहूं बोए। लुकमान कहता है मालिक अभी उन्हें पकने तो दो, जब पककर के आपके घर में आएंगे तो गेहूं ही आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। अब तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा तेरे को किसने क्या सिखाया, तू इतना बुद्धिमान था, तेरी बुद्धि कैसे पलट गई, तू मूर्ख कैसे हो गया? अरे कभी जो बो करके गेहूं उगे हैं आज तक तूने कहीं देखा उगते हुए? कहता है मालिक मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, आपको गेहूं ही मिलेंगे। अब तो मालिक का गुस्सा इतना तेज, उसने एक थप्पड़ मारा और बेचारा लुकमान कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। बोला तू अब भी सच बता दे, तूने गेहूं के बदले जो बोए क्यों? उसने कहा मालिक आप कहते हो ना कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरा अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। अगर आप इतना अत्याचार करके, भ्रष्टाचार करके और इतना दुख दे करके भी बदले में स्वर्ग पा सकते हो तो मैं जो बो करके गेहूं क्यों नहीं पा सकता? बड़े लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था ना भगवान से कि इसकी मुझे बुद्धि ठिकाने लगानी है, तो एकदम मालिक को ना जैसे झटका सा लगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, कभी मैं किसी की पिटाई कर देता हूँ, कभी किसी को अपशब्द बोल देता हूँ, काम भी इनसे कितना करवाता हूँ, सारा मोहल्ला मेरे से दुखी है और मैं तो रोज कहता हूँ कि भगवान मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, मेरा अगला जन्म बहुत अच्छा होगा, तो इतने पाप करके मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? अगर जो बो के गेहूं नहीं उगेंगे तो उस दिन के बाद मालिक बदल गया और उसने लुकमान को बहुत धन्यवाद दिया। लुकमान तू दिखने में तो छोटा है लेकिन तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है और उसका फल देखिए क्या निकला। हम किसी का भला करेंगे, एक विकट परिस्थितियों में भला करना, एक होता है साधारण परिस्थितियों में किसी का भला करना, लेकिन ये तो बड़ी विकट परिस्थिति थी, एक छोटा सा खरीदा हुआ नौकर और इतने बड़े अहंकारी मालिक की बुद्धि चेंज कर दे कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन उस एक की बुद्धि चेंज हुई तो सुखी कितने लोग हो गए। काम बहुत बड़ा था तो बड़े काम का रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है, तो रिवॉर्ड क्या मिला कि बाद में ये मुक्त हुआ और बाद में ये इतना फेमस हकीम बना। आज भी लोग कहते हैं कि इस दर्द की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब हम जो काम कर रहे हैं, बाबा ने हमको जो काम दिया है वो ऐसा ही है काम, लुकमान की तरह से माया के मुरीद, सारे माया के गुलाम थे कि नहीं थे? और भगवान ने उन गुलामों को काम दिया कि तुम अपने इस मालिक की बुद्धि चेंज करो, क्योंकि कलयुग में तो सबकी मालिक माया रानी सबको चलाती है, सबको अधीन किए बैठी है, लेकिन हम भी अपनी शुभ भावना से, अपनी दृढ़ता से, अपनी सकारात्मकता से, हमारे चारों ओर जो माया का साम्राज्य है उसको हिलाने में लगे हुए, काफी तो हिल गया और कुछ बाकी बचा है वो भी हिल जाएगा, लेकिन इतने बड़े काम का फल भी बहुत बड़ा है और इसका फल ये है कि हम भी कितने साल के लिए, 2500 साल के लिए माया की गुलामी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। काम तो कठिन है लेकिन हमारी शुभ भावनाएं रंग जरूर लाएंगी, हमारा पुरुषार्थ सफल जरूर होगा। बाबा की श्रीमत पर चल के हम जो अपने को बदल रहे हैं उससे दुनिया जरूर बदलेगी। काम कितना भी बढ़ाओ, लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो एक दिन सफलता अपने आप चरणों में आ जाती है। तो हम सब भी बाबा के बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रही हैं, चढ़ रही हैं ना सभी, सभी चढ़ती कला में हैं कि उड़ती कला में हैं? कौन सी कला में है? उड़ती कला का समय है अभी। पहले जमाने में साइकिल होती थी, फिर ऑटो आया, फिर कार आई, उसके बाद फिर हवाई जहाज का सफर सब पसंद करते। तो ऐसे ही पहले लोग पैदल चलते थे और पहले हम धीरे धीरे चले ज्ञान में, क्योंकि कई तरह के प्रश्न थे, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, हमारी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन अभी तो मेजोरिटी भी है, क्लैरिटी भी है, बड़ों ने माखन निकाला, हमें निकला हुआ माखन मिला, तो अब हमारी चलती नहीं, चढ़ती नहीं, दौड़ती नहीं, लेकिन उड़ती कला। और बाबा ने एक मुरली में कहा था जो उड़ती कला होती है ना उसके रास्ते में कोई विघ्न नहीं आता, जब आप सड़क पे चलते हो तो ब्रेक कराते हैं, और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन जो आसमान में हवाई जहाज उड़ता है उसके सामने तो कुछ नहीं आता, पहाड़ को भी क्रॉस कर लेता है। तो जब हमारी उड़ती कला है तो उस कला के आगे कोई अवरोध नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं। और उड़ती कला बाबा किसको कहते हैं, हर रोज बाबा उसका इशारा देते हैं, बच्चे फरिश्ते बनो तो कोई रुकावट नहीं है। इस हाड़ मास के शरीर में हजारों रुकावटें, इस हाड़ मास के शरीर के साथ हजारों स्मृतियां, हजारों संस्कार, लेकिन जैसे ही हाड़ मास के शरीर से अलग होके आत्मा फरिश्ता बन जाती है, सब स्मृतियां भी खत्म, सब संस्कार भी खत्म और सब आदतें भी खत्म, हल्की होकर के बाप समान स्थिति का अनुभव करती है। तो उड़ती कला अर्थात फरिश्ता स्थिति, हम सबको उसी में टिकना है। ओम शांति।
सतयुग में अब तुम्हें आना है।